नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं लवलीन निगम। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फेडरल रिजर्व के गवर्नर लीजा कुक को हटाने का आदेश दिया। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने यहूदी विरोधी अपराधों में शामिल होने के कारण ईरानी राजदूत को निष्कासित किया। इसराइल में महत्वपूर्ण सुरक्षा कैबिनेट बैठक से पहले गाजा में संघर्ष समाप्त करने और बंधकों की वापसी की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया। और श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे को न्यायालय ने सरकारी धन के दुरुपयोग के मामले में जमानत दी। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फेडरल रिजर्व के गवर्नर लीजा कुक को बर्खास्त कर दिया है। ट्रंप ने ऋण धोखाधड़ी के आरोपों को उनकी बर्खास्तगी का प्राथमिक कारण बताया है। कुक हाल ही में ऋण धोखाधड़ी के आरोपों पर ट्रंप प्रशासन की जांच के दायरे में आई थी। उन्होंने फेडरल रिजर्व बोर्ड में सेवा करने वाली पहली अफ्रीकी अमरीकी महिलाओं में से एक के रूप में इतिहास रचा था। फेडरल रिजर्व के 111 वर्ष के इतिहास में पहली बार राष्ट्रपति ने केंद्रीय बैंक के गवर्नर को बर्खास्त किया है। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने यहूदी विरोधी अपराधों में शामिल होने के कारण ऑस्ट्रेलिया में ईरानी राजदूत अहमद सादगी और दूतावास के 3 अन्य कर्मचारियों को निष्कासित कर दिया है। उन्हें देश छोड़ने के लिए 7 दिन दिए गए हैं। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने इस शत्रुतापूर्ण व्यवहार के जवाब में तेहरान में ऑस्ट्रेलिया के दूतावास को बंद करने की घोषणा की है। इस बीच ईरान ने इन आरोपों का खंडन किया है कि ईरान ने कहा कि उनके दूत को निष्कासित करने का निर्णय ऑस्ट्रेलिया की घरेलू नीतियों के कारण लिया गया है। गाजा में संघर्ष समाप्त करने और बंधकों की वापसी की मांग करते हुए इसराइल में आज सुरक्षा कैबिनेट की बैठक से पहले प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने तल अवीव में सड़कों पर इसराइली झंडे फहराते हुए बंधकों की तस्वीरें प्रदर्शित की। प्रदर्शनकारी शहर में अमरीकी दूतावास के पास और देश भर के विभिन्न मंत्रियों के घरों के बाहर एकत्र हुए। सुरक्षा कैबिनेट की बैठक का एजेंडा युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई के लिए नए सिरे से बातचीत पर चर्चा के लिए हो सकता है। श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे को आज कोलंबो फोर्ट मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सरकारी धन के दुरुपयोग के एक मामले में जमानत दे दी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
उन्हें पिछले शुक्रवार सरकारी धन के दुरुपयोग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। मजिस्ट्रेट नील पुलिलंकापुरा ने उन्हें 5.5 बिलियन रुपए के 3 जमानतों पर रिहा करने का आदेश दिया। श्री विक्रमसिंघे इस समय कोलंबो नेशनल हॉस्पिटल के आईसीयू में हैं और उन्हें अदालत की सुनवाई में वीडियो लिंक द्वारा हिस्सा लिया। उनके वकीलों ने मेडिकल रिपोर्ट पेश की जिसमें 3 करोनरी धमनियों के ब्लॉक होने और अन्य स्वास्थ्य जटिलताओं का जिक्र है। अदालत से विशेष रियायत की मांग इसी आधार पर की गई। श्री विक्रमसिंघे श्रीलंका के पहले पूर्व राष्ट्रपति हैं जिन्हें भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। विश्व दर्पण के लिए कोलंबो से मैं अहमद मुईन फारूकी।
लिथुआनियाई संसद ने आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के इंगा रुगिनियन को लिथुआनिया का नया प्रधानमंत्री नियुक्त करने की स्वीकृति दे दी। संसद की मंजूरी के बाद सामाजिक सुरक्षा और श्रम मंत्री रुगिनियन के पास अब नए मंत्रिमंडल को संसद में मतदान के लिए पेश करने के लिए 15 दिन का समय है। वियतनाम के उत्तरी और मध्य क्षेत्रों में तूफान काजिकी से 3 लोगों की मौत हो गई और 10 अन्य घायल हो गए। तूफान के कारण मूसलाधार वर्षा, तेज हवाएं चली तथा व्यापक बाढ़ आई। तूफान के कारण 6,800 से अधिक घर क्षतिग्रस्त हो गए। बड़े पैमाने पर खेतों में पानी भर गया और करीब 18,000 से अधिक पेड़ गिर गए। बिजली के बुनियादी ढांचों को भी काफी नुकसान पहुंचा। उधर पाकिस्तान में लगातार हो रही बारिश से खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। इससे कृषि भूमि और आवासीय क्षेत्रों को नुकसान हुआ है। स्थानीय आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार 15 अगस्त से अब तक 400 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। प्रभावित इलाकों में गंभीर बीमारियों के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। राहत और बचाव कार्य जारी हैं। ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विश्व दर्पण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की मेक इन इंडिया यात्रा में एक नया अध्याय जुड़ रहा है। गुजरात में टीडीएस लिथियम आयन बैटरी संयंत्र में हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड के उत्पादन का शुभारंभ करने के बाद उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड के राष्ट्रीय लक्ष्य में आज महत्वपूर्ण दिन है।
आज से भारत में बने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स 100 देशों को एक्सपोर्ट किए जाएंगे। साथ ही आज हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट हो रही है। आज का ये दिन भारत और जापान की फ्रेंडशिप को भी नया आयाम दे रहा है। मैं सभी देशवासियों को, जापान को, सुजुकी कंपनी को बधाई देता हूँ।
श्री मोदी ने कहा कि भारत के पास बड़ी संख्या में युवा और कुशल कामगार हैं।
भारत के पास डेमोक्रेसी की शक्ति है और भारत के पास डेमोग्राफी का एडवांटेज है। हमारे पास इसलिए कि हमारे हर पार्टनर के लिए विन विन सिचुएशन बनाता है। मारुति सुजुकी जैसी कंपनियां मेक इन इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बन चुकी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने के लिए जापान और चीन की यात्रा पर बृहस्पतिवार को रवाना होंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में कहा कि श्री मोदी 29 और 30 अगस्त को जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के साथ 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए जापान में रहेंगे।
Shri Narendra Modi is embarking on an official visit to Japan on the evening of 28 August. He will be in Japan on the 29th and the 30th of August for holding the 15th India-Japan annual summit with the Prime Minister of Japan, His Excellency Shigeru Ishiba. This will be a visit that will be fully dedicated to the bilateral agenda between India and Japan.
इसके बाद प्रधानमंत्री चीन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के निमंत्रण पर 31 अगस्त और 1 सितंबर को शंघाई सहयोग संगठन SCO के राष्ट्राध्यक्षों की 25वीं बैठक के लिए चीन के तियानजिन जाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के 2 उन्नत युद्धपोतों INS उदयगिरी और INS हिमगिरी का जलावतरण किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि यह भारत सरकार की मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल की सफलता को दर्शाता है।
INS उदयगिरी और INS हिमगिरी की कमीशनिंग आत्मनिर्भर भारत के सपने की एक साकार होती तस्वीर है, साथ ही हमारे विजन और कमिटमेंट का भी यह प्रमाण है। मैं इंडियन नेवी को इस अवसर पर विशेष बधाई देता हूँ। INS उदयगिरी और INS हिमगिरी के शामिल होने से हमारी नेवी की स्ट्रेंथ, उसकी रीच और उसकी रेजिलियंस में भारी बढ़ोतरी होगी, ऐसा मेरा विश्वास है।
पहली बार भारत के 2 प्रतिष्ठित शिपयार्डों से 2 प्रमुख लड़ाकू जहाजों का एक साथ जलावतरण किया गया है। भारत और कुवैत के बीच विदेश कार्यालय परामर्श का 7वां दौर आज नई दिल्ली में संपन्न हुआ। बैठक में दोनों पक्षों ने आपसी संबंधों की व्यापक समीक्षा की और परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच आज कृषि पर संयुक्त कार्य समूह की 5वीं बैठक आयोजित हुई। कृषि क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग अधिक प्रगाढ़ बनाने की दिशा में दोनों पक्षों ने इसे महत्वपूर्ण बताया। और अब खेल खबरों के साथ हैं शक्ति प्रताप सिंह।
सिफ्त कौर सामरा ने एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस स्पर्धा के व्यक्तिगत वर्ग में स्वर्ण पदक जीता और टीम स्पर्धा में भी स्वर्ण पदक दिलाया, जहां अंजुम मुगदिल और आशी चौकसी ने सामरा का साथ दिया। उधर गुजरात के अहमदाबाद में खेली जा रही कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप के दूसरे दिन कोयल बार ने महिलाओं के 53 किलोग्राम वर्ग में 192 किलोग्राम वजन उठाकर युवा और जूनियर वर्ग में नया विश्व रिकॉर्ड कायम करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं सीनियर वर्ग में स्नेहा सोरेन ने रजत पदक जीता। भावना गोगोई ने महिलाओं की 58 किलोग्राम वर्ग में युवा श्रेणी का स्वर्ण पदक जीता। पुरुषों में अनिक मोदी ने युवा वर्ग में स्वर्ण पदक, यश ने जूनियर वर्ग में स्वर्ण पदक और राजा मुथुपंडी ने सीनियर वर्ग में रजत पदक अपने नाम किया।
नेपाल में आज हरतालिका तीज बड़े उत्साह के साथ मनाई गई। इस अवसर पर पशुपतिनाथ मंदिर के बाहर लाल जोड़े और पारंपरिक आभूषणों से सजी महिलाएं श्रद्धालुओं की लंबी कतार देखी गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फेडरल रिजर्व के गवर्नर लिजा कुक को हटाने का आदेश दिया। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने यहूदी विरोधी अपराधों में शामिल होने के कारण ईरानी राजदूत को निष्कासित किया। इसराइल में महत्वपूर्ण सुरक्षा कैबिनेट बैठक से पहले गाजा में संघर्ष समाप्त करने और बंधकों की वापसी की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया। और श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे को न्यायालय ने सरकारी धन के दुरुपयोग के मामले में जमानत दे दी है। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।